Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandukya Upanishad presented by Swamini Sri Nishthanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Bhadram Karne Vishnu Yama Devaha भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः शिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेव देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो रुद्रश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेताः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनस्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ
माण्डुक्योपनिषत् मन्त्र दो
सर्वं हि सर्वं हि
सर्वं हि
एतत्
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 ब्रह्म
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 अयमात्मा
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 ब्रह्म
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 सोऽयमात्मा
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 चतुष्पाद
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 सर्वं हि एतत् ब्रह्म ये एक विचार हुआ, ये एक आदेश हो गया। आप ब्रह्म को जो भी मानते हो अज्ञान अवस्था में, आपके लिए ब्रह्म जो भी हो, श्रुति से अपेक्षित, ऋषि मुनियों के करे गए अनुभव से अपेक्षित, यानी आप कोई भी चीज बाजार से लाते हैं तो उसके ऊपर क्या टैग लगा होता है? हाँ, सीई का लेबल लगा होता है, आईएसआई मार्क लगा होता है, हाँ ओके लगा होता है, क्या कहते हैं? टेस्टेड। ऐसे ही नहीं खरीद लाते, आप वो मार्क देखते हैं, टेस्टेड है फिर लाते हैं। तो ये जो है ये तो अनुभव वाक्य है, और ये जो अनुभव वाक्य है वो टेस्टेड है। हा? ये ऋषि मुनियों ने, क्योंकि परमात्मा जो अपौरुषेय है, ये श्रुति जो अपौरुषेय है, अगर ये अपौरुषेय है, कोई पुरुष की लिखी हुई बनाई हुई नहीं है, तो लिखा किसने, ये आया किस प्रकार? हाँ, ब्रह्मा जी ने पेपर भेजे क्या ऊपर से और छप गए? आया किस प्रकार? ये शब्द में ये जो अनुभूति है ब्रह्म की, ब्रह्म का जो ठोस ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, वो शब्दांतर उसका कैसे हुआ? तो भाई, वो ध्यान से, ज्ञान से आत्यंतिक अत्यंत चित्त शुद्धि का ये परिणाम है। अत्यंत आत्यंतिक चित्त शुद्धि एक क्षण के लिए भी देहाध्यास न हो, एक क्षण के लिए भी आपको न लगे कि मैं ये शरीर हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ, तो लगना ये आवश्यक नहीं है। ये लगना यानी क्या? ये शरीर भाव देहाध्यास का कारण क्या है? तो बोले अत्यंत राग और अत्यंत द्वेष। हाँ, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे मिले, ये मुझे नहीं अच्छा लगता है, ये मुझे न मिले, ये राग और द्वेष का परिणाम है जो आपको देहाध्यास तक ले जाता है। अब देख लीजिए कि ये चित्त को, हमें चित्त को शुद्ध करने की कितनी आवश्यकता है। सिर्फ ये श्रवण किया 10-15 मिनट, एक घंटा काफी नहीं है। सिर्फ घर जाके 10-15 मिनट मनन किया काफी नहीं है। पूरे दिन तक आपके विचार को छानते रहो, कहां मैं खींच रहा हूं, कहीं से मैं दूर जा रहा हूं, मैं हूं कौन, हु एम आई, और अपना जो आपा है, अपना जो अहम है, उसे बाजू पे ही रख के पूरा व्यवहार जो है आप करते रह जाइए, तो कितने ही समय के बाद आत्यंतिक चित्त शुद्धि का परिणाम ये आएगा कि भीतर जो आत्मा है, आत्मा विवरुण से तनुम स्वम, वो परमात्मा का जो स्वभाव है ना, भीतर से झलकेगा और फिर आपको पता लगेगा कि ये सब क्या है। तो जब आप ध्यान में कभी निधिध्यासन की पराकाष्ठा क्या है, जब अंतिम वृत्ति मैं ध्यान करने वाला हूँ वो भी निकल जाए, तो आपको आपके ही घर में बैठे बैठे ये विचार आएगा, ये स्फुरण होगा कि सर्वम ही एतद् ब्रह्म, ये आया विचार। तो ये कहने का तात्पर्य क्या है, आपको ये जो शब्द है, ये मंत्र है, उस पर श्रद्धा होनी ही चाहिए, क्योंकि ये टेस्टेड है, इसके ऊपर और इसकी परीक्षा नहीं हो सकती। अब क्या करना है, ये सत देखिए, मनन यहाँ नहीं है, यहाँ आप युक्तिपूर्वक मनन करके, यहाँ कोई भी चीज की आप युक्ति यहाँ नहीं लगा सकते। युक्ति यानी किस प्रकार नहीं लगा सकते, कि ये हो नहीं सकता, ऐसे नहीं लगा सकते। यहाँ जो मनन जो है वो कैसे होगा, तो बोले ये है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो मुझे समझाने के लिए जो युक्ति है वही यहाँ काम लगेगी। यहाँ तर्क नहीं चलता है, नैषा तर्केण मतिरापनेया, कठोपनिषद में ये बात की, तर्क यानी युक्ति, मनन चिंतन मनन में तर्क ही आता है, पर यहाँ तर्क नहीं लगता, यानी कौन सा तर्क नहीं लगता, कि मैं ऐसा एक भी तर्क है परमात्मा, ये जो प्रार्थना करते हैं ना, ये इसलिए करते हैं ना प्रार्थना, स्वस्ति नो बृहस्पतिर् ददातु, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाहा, ये सब प्रार्थना हम क्यों करते हैं, ये प्रार्थना इसीलिए करते हैं कि हे परमात्मा, वो जो तर्क है, जो श्रुति को अनपेक्षित है मेरे पास से, कौन सा तर्क अनपेक्षित है, कि ये श्रुति के वाक्य सच नहीं है, ऐसे में तर्क देते जाऊं, ये सब वादियों की बात है, और वो वादी आएंगे चौथे प्रकरण में, पर उसको बड़ा समय है। तो हे परमात्मा, मेरी बुद्धि में ऐसी तर्क बुद्धि मुझे कभी न दो, जिससे ये उपनिषद के वाक्य सच है कि नहीं है ऐसा तर्क में लगाऊं, इसीलिए कहा नैषा तर्केण। पर यही श्रुति कहती है कि सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, जो बुद्धि व्यवहार संबंधी बुद्धि है वो काम की नहीं, इसमें थोड़ी और ज्यादा बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, यानी युक्ति पूर्वक की बुद्धि चाहिए। पर कौन सी युक्ति, जो युक्ति ये शब्द को यथार्थ करके मेरी अनुभूति का विषय बना दे। हमेशा जब आप श्रुति का, उपनिषद का, स्मृति का श्रवण करते हैं, तो ऐसा याद रख लीजिए कि ये मेरी अनुभूति का विषय कब बने, और मेरी अनुभूति का विषय अगर श्रवणात्मक जो ज्ञान है वो नहीं बन सकता, तो वो सब पत्थर पे पानी जैसा है, जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। तो हमेशा ऐसा ही ख्याल रख दीजिए, हे परमात्मा, भद्रम करने भी शून्यम देवा है, यानी क्या कि ये जो श्रवण जो है, आप ऐसा श्रवण मुझे कराइए कि श्रवण करते वक्त मेरा मन प्रतिक्रिया रहित हो, श्रवण करते वक्त जो वक्ता को वक्तुम इच्छा विवक्षा, यानी वक्ता को, यानी कि उपनिषद को जो भी यथार्थ वाक्य कहना है वैसा ही श्रवण मुझसे हो। पर जब मैं श्रवण करूं, तब मेरी आंखें भद्रम पश्ये मां अक्ष वीर्य दत्त रहा, मेरी आंखें वो भद्र को ही देखे, मेरी आंखें कोई और आंखें अच्छे को देखे, यानी अच्छे रूप की अपेक्षा नहीं है, मेरी आंखों को जब मैं भद्र सुन रहा हूँ, तब मेरी आंखों को दूसरे रूप की देखने की इच्छा न हो, हो परमात्मा, इसका भी आप ध्यान रखना। मेरी सब जो इंद्रियां है, ज्ञानेन्द्रिया है, कर्मेन्द्रिया है, पंच प्राण है, ये जो कुछ भी है वो एक ही श्रवण में लगे रहे, वो अलग अलग यहाँ तहाँ न जाओ, इसलिए ये जो शांति पाठ करते हैं उसमें सब कुछ आवृत्त हो जाता है। उतना ही नहीं, अंत में वक्ता और श्रोता की भी रक्षा करने की प्रार्थना, अवतु माम अवतु वक्तारम, उसकी भी प्रार्थना की जाती है। क्यों इतनी सारी प्रार्थना, क्योंकि ये गहन रहस्य जो है वो मेरी अनुभूति का विषय बनने जा रहा है, ख्याल कीजिए, नहीं तो ये शांति पाठ की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये श्रुति सुनने के लिए इतनी सारी प्रार्थना वो परमात्मा को करते हैं जो परमात्मा का अब तक पता नहीं लगा है, तो समझ लीजिए कि कुछ तो होगा इसमें हाथ, कुछ तो इसका रहस्य होगा। ये प्रार्थना इसलिए करते हैं क्योंकि ये मेरी अनुभूति का विषय बने, नहीं तो प्रार्थना की जरूरत, सिर्फ मुझे ऐसा ही आपको समझाना है कि ये सब ब्रह्म है, उसमें प्रार्थना की जरूरी क्या है। हा? मेरी आंखें बुरा देखे या अच्छा देखे, मुझे तो सुनने से ही मतलब है कि सर वो ब्रह्म है, पर ये अनुभूति का विषय बनाने के लिए। और अगर इसको हमने अनुभूति का विषय नहीं बनाया और मात्र सुन लिया तो उसमें एक दोष भी लग जाता है। दोष यानी कौन सा दोष? तो अज्ञान रूप दोष ही लग जाता है और कोई दोष आपको लग नहीं सकता। और ये दोष के निवारण के लिए तुरंत ही 3 बार शांति बोल देते हैं कि भाई मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हो, और अगर मेरा प्रयत्न में कुछ कमी हो गई और दोष लग गया तो वो दोष से जो ताप और पाप होगा उसकी शांति अभी से ही कर दो, क्योंकि मेरा प्रयत्न पूरा नहीं पड़ रहा है, अभी वासना तो चल ही रही है। तो ये त्रिताप की शांति। अब कल हम जो विचार कर रहे थे सर्वम ही एतद् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, यहाँ तक हम आए थे कि अयम आत्मा ब्रह्म। अब ये जो मंत्र है उससे शंकराचार्य जी बहुत सारी बातें हमें करना चाहते हैं। पहली बात कि ये जो परमात्मा जो है वो परमात्मा का स्वरूप मेरे भीतर किस प्रकार है वो जानने के लिए ये मंत्र की शुरुआत की गई है। तो पहले कोई भी श्रुति या उपनिषद या अब तक जो हमने परमात्मा को जाना वो परोक्षतया ही निर्देश किया है। परोक्षतया यानी क्या कि परमात्मा क्या है भाई, तो बोले सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये परमात्मा ऐसा है, ये परमात्मा अदृश्य है, ये परमात्मा अगोचर है, ऐसी ऐसी विभिन्न उपनिषदों की बात की। ये उपनिषद की विशेषता यह है कि यहाँ सिर्फ परोक्षतया ज्ञान नहीं दिया है कि ये आत्मा ऐसा है, ऐसा नहीं कहा, ये आत्मा को विशेषण से लक्षित किया गया है, विशेष रूप से निर्देशित किया गया है। और उसके लिए शंकराचार्य जी ने जो शब्द दिया है उन्होंने कहा है कि अभिनय पूर्वक, ये बराबर उन्होंने लिखा है प्रत्येगात्मनि अभिनयेन निर्दिशति। ये प्रत्येक आत्मा को, ये एक ही ऐसा उपनिषद है जहाँ प्रत्येक आत्मा को अभिनय करके बताया गया है। अभिनय करके यानी दिखा के अंगुली निर्देशन किया है, और ये बड़ी सूक्ष्म बात है कि जब आत्मा को अंगुली निर्देशन करते हैं जो अनिर्देशित है, जिसको कभी भी आप प्रमाण का विषय नहीं बना सकते, उसे यहाँ बनाया है, अभिनित किया है। कैसे अभिनित किया है? कहा कि अयम आत्मा, ये जो आत्मा है, अब तक जो ब्रह्म जो आत्मा था वो अवेलेबल नहीं था, अब अवेलेबल कर दिया। कैसे? अयम आत्मा, अयम आत्मा यानी यह आत्मा। कौन सा आत्मा? तो तेरे भीतर जो प्रत्येक आत्मा है, तेरे भीतर जो अनुभव करने वाला जो कुछ भी है ना, किसने अनुभव किया, कौन ये सुन रहा है? तो बोले मैं सुन रही हूँ। देखा किसने? मैंने देखा। सोचा किसने? मैंने सोचा। समझ में आया किसे आया? तो बोले मुझे आया। समझ में आया कि नहीं? तो बोले मुझे समझ में कुछ भी नहीं आया, आप ये क्या बता रही है। इतना तो समझ में आया ना कि कुछ समझ में नहीं आता है, वो किसने जाना? तो मेरी समझ और न समझ को जानने वाला कोई और तीसरा है, सबसे समझदार, वो अयम है। फिर से कहती हूँ, जो समझ रहा है, जो समझने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश करने के बाद 1 घंटे के बाद जो ये निर्णय पे आता है कि मैंने तो अपनी पूरी कोशिश लगा ली फिर भी समझ में नहीं आता है, उसे पकड़ो। ये कौन कह रहा है उसे पकड़ो, वो ये अयम है। नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, पर इतना भी आप सोच लेंगे कि ये जो नहीं समझ रहा है ऐसा किसने मेरे भीतर समझा? मैंने तो आपको आके नहीं बताया, हम तो आपको घर पे आके नहीं बताते कि आपने ये समझा नहीं है भाई, बराबर प्रयत्न करो, हम ऐसा नहीं कहते। आपको भीतर आके किसने कहा? तो बोले नहीं, अंदर से ही लग रहा है। तो अंदर से कौन लगा रहा है? वो ये अयम है, ये निर्देशित, ये अयम, ये आत्मा आपका है, ये प्रत्येक आत्मा है। और वो अयम क्या है? अयम आत्मा ब्रह्म, यानी ये मंत्र में परोक्षतया जो ब्रह्म है, अब तक परोक्ष रहा, उसे विशेषण रूप से, अब तक परोक्ष रूप से बतलाए हुए उस ब्रह्म को विशेष रूप से प्रत्यक्षतया यह आत्मा ब्रह्म है ऐसा कर निर्देश करते हैं। ये एक बात हो गई, यानी ये आत्मा जो है, अयम जो है, ये जो अनुभूति जो है मेरे करीब आने लगी है। दूसरी बात अब शंकराचार्य जी बता रहे हैं, यहाँ अयम शब्द द्वारा चतुष्पाद रूप से विभक्त किए जाने वाले आत्मा को अपने अंतरात्मा रूप से अभिनय पूर्वक अयम आत्मा ब्रह्म कहकर बतलाते हैं। अब यहाँ कहा है कि अयम शब्द द्वारा चतुष्पाद रूप से, ये अयम याने क्या, अयम आत्मा, ये आत्मा याने कल जो हमने बात की थी प्रत्येक आत्मा, आपके भीतर रहा प्रत्येक आत्मा, ये चतुष्पाद रूप से सोयम आत्मा चतुष्पाद, चतुष्पाद रूप से बतलाया गया है। चतुष्पाद में अर्थात चौथा भाग, आपके भीतर कोई चौथा भाग है जो ब्रह्म है ऐसा बतलाया गया है। अब ये सुनने से लिटरल ट्रांसलेशन ऐसा ही लगेगा। तो भाई चौथा भाग यानी क्या, तो एक गौ माता खड़ी है, गौ माता के कितने पैर है, हाँ चार पैर है, तो एक भाग, दो, ये तीन और ये चौथा पाद, ऐसे क्या पाद है ब्रह्म के, नहीं। तो बोले नहीं, गौ माता जैसे चौथा पाद नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं गौ माता जैसे चौथा पाद नहीं है, और किसके जैसे पाद है, तो यहाँ शंकर भाष्य में शंकराचार्य जी बताते हैं, उन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया है वो है कारशापण। वो पहले के जमाने में जो सिक्के होते थे उसे कारशापण कहते थे, 16 आनी के होते थे। अभी आपका जो रुपया है उसमें क्या है, 4 54 है, ठीक है, 4 बार 25 पैसे के जो सिक्के हैं उसमें 25 पैसे के कितने भाग है एक रुपये के सिक्के में, तो बोले 4 भाग है। अब एक रुपये का सिक्का आपके सामने रखूं तो ये 4 भाग दिखते हैं, ये 4 भाग दिखते नहीं है, पर 4 भाग है। तो ऐसे एक ही रुपये में जो 4 54 है, ऐसे चौथा चतुष्पाद इसका है। यानी क्या कि कोई भी एक भाग को जाना, एक चवन्नी को जाना, तो पूरे रुपये को आप नहीं जान सकते। पूरे रुपये को जानने के लिए ये चारों चवन्नी जो है वो एक साथ जाननी पड़ेगी, एक साथ जाननी पड़ेगी, बस यही कंडीशन है। व्यवहार में क्या होता है हम जानते हैं, पर ये चारों जो भाग है उसे एक साथ नहीं जानते, इसलिए आत्म साक्षात्कार नहीं होता है। एक साथ जान लिया तो बात बन जाएगी। हम कैसे जानते हैं, एक चवन्नी को जाना, सुबह उठे और रात तक जागृत अवस्था एक पाक, पर वो जागृत अवस्था को जान के बाकी की अवस्था जो है, जो अनुभव करने वाला है उसे भी हम भूल जाते हैं। फिर स्वप्न अवस्था सुषुप्ति को अलग जाना, और तुरीय अवस्था जो चौथा जो है ये सबको जानने वाला है, उसे जानने की कभी भी हमने फिक्र नहीं की है। तो जो चौथा रह गया है, ये हमारी तीनों अवस्था से जो एक चौथा है, ये अयम है, उसे जानने के लिए, वो जो चतुष्पाद है उसे जानने के लिए ये अयम कहा है कि ये चौथा जो है, जो तुरीय है, जो आत्मा का चौथा लक्षण है, वो तेरे भीतर है, उसे तुझे जानना है। ये सिर्फ लिटरल ट्रांसलेशन हुआ शंकर भाष्य का। अब आगे कहते हैं कि ये कार्श्यापन के समान 4 पाद अंश वाला है, गौ के समान नहीं। विश्व आदि तीनों पादों से क्रमशः पूर्व पूर्व का लय करते हुए अंत में तुरीय ब्रह्म की उपलब्धि होती है। अब देखिए कि जब ये उपनिषद का श्रवण करते हैं तो उपनिषद में ब्रह्म की बात तो बता ही देते हैं, पर ब्रह्म की बात बता देने के बाद हमारी इच्छा से हम ब्रह्म को जानने की चेष्टा भी नहीं कर सकते। एक बार आप उसमें आ गए, एक बार आप कोई इंस्टीट्यूशन या कोई ऐसी संगठन में, ऐसी मिलिट्री में, ऐसी डिसिप्लिन में एक बार आप एनरोल हो गए, एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, फिर क्या होगा कि भाई वो जो जो कुछ आपसे अपेक्षित रखेंगे वो करना ही पड़ेगा आपको, आप अपनी मर्जी से नहीं। कोई मिलिट्री में जाएगा, कोई सोल्जर, पर वो बड़ा अच्छा निशानेबाज होगा उसके पूर्व जीवन में, तो भी उसे जो सिखाया जाएगा उसी प्रकार उसे निशान ताकना है। वो अपनी मर्जी से नहीं निशान ताक सकेगा, वो उससे ज्यादा अच्छा, उसके इंस्ट्रक्शन से भी ज्यादा अच्छा ताकने वाला है, फिर भी उधर अपनी नहीं चल सकती। यहां हमारे अहंकार को बड़ी से बड़ी चोट लगती है कि अब तो मैंने ये सीक्रेट जान लिया है। क्या सीक्रेट जान लिया है कि अयम आत्मा ब्रह्म, तो मैं किसी प्रकार जान लूंगा। अब मुझे गुरु की भी जरूरत नहीं है, शास्त्र की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। आई विल मैनेज दिस शो। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये मैनेज नहीं हो सकता, नॉट अलाउड। और इसीलिए यहाँ शंकराचार्य जी ने कहा है कि जिस प्रकार शास्त्र को अपेक्षित है उसी प्रकार उसी विधि से ये ब्रह्म को जाना जा सकता है। तो हम अब विधि जानने के लिए तैयार है। अगर ऐसा ही है तो वह विधि हमें बता दीजिए। तो यहाँ शंकराचार्य जी अब विधि बता रहे हैं। वो विधि है विश्व आदि त्रयाणाम विश्वादिनाम पूर्व पूर्व प्रविलापेन तुरीयस्य प्रतिपत्ति ही इति। क्या कहा है? विश्व आदि तीन पादों में से आत्मा के जो तीन भाग है ना, तीन चवन्य की बात की थी रुपये में, वो तीन भाग क्या है? तो बोले जागृत अवस्था यानी विश्व, स्वप्न अवस्था यानी तैजस, और सुषुप्ति अवस्था यानी प्राज्ञ। तो ये जो विश्व आदि तीन पाद जो है उसमें से और कंडीशन है, जल्दी नहीं करना है, क्रमशः एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यहाँ भी क्रम अपेक्षित है। और अगर ये समझा तो इसी के प्रकार ही जाना है, यहाँ आप अपनी नहीं चला सकते। तो बोले क्रमशः पूर्व पूर्व का लय करते हुए, बराबर सुनिए, पूर्व पूर्व का लय करते हुए अंत में तुरीय ब्रह्म की उपलब्धि होती है। पूर्व पूर्व का लय करते हुए यानी जागृत अवस्था। अब हमें शुरुआत कहां से करनी है? विश्व आदि क्रमशः की पूर्व पूर्व का लय अगर शुरू कर देंगे तो हम आत्मा साक्षात्कार को पा सकेंगे। अच्छा, तो यानी जागृत अवस्था पहले ले लीजिए, जागृत अवस्था अब लय करना शुरू करना है। तो हमें लगेगा अभी लय क्या करना है, वो तो हो जाएगा, सोच लेंगे दिमाग से लय हो जाना, ठीक है सोच लेंगे, अगर इजी है तो कर देंगे अभी यही। ये जागृत अवस्था का लय करना है, जागृत अवस्था का लय करना है कि यानी क्या, हम सब तैयार है, सब तैयार है, ठीक है। तो जागृत अवस्था में क्या हो रहा है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों जो विषय है, ये ज्ञानेन्द्रिय के जो पांच विषय जो है, वो विषय का लय करना है। वो विषयों का लय यानी वो विषय प्रति जो राग है, जो आसक्ति है, और जो द्वेष है, वो द्वेष का लय करना है। वो विषय के प्रति जो सत्य बुद्धि है उसका लय करना है। ये विषय के प्रति जो नित्य बुद्धि है उसका लय करना है। ये जागृत अवस्था में आंख से जितने जितने रूप आपने देखे वो सभी रूप का लय ये एक चक्षु इंद्रिय में करना है। दृष्टा यानी कि ये जो दृश्य का दृश्य जो है उसका दृष्टा में लय करना है। चक्षु इंद्रिय ये रूप का लय हो गया कि भाई ये सब जो रूप जो है, रूप तो अलग अलग है, रूप को देखने वाली चक्षु कितनी है, भाई चक्षु जो इंद्रिया जो है वो तो एक ही है, इमेज तो एक ही पड़ रहा है, एक ही मैं देखने वाला, अनेक रूप देख रहा हूँ तो अनेक को देखने वाला जो एक है वो ही मैं हूँ, ये दृष्टा है, ये रूप सब भिन्न भिन्न है, ये रूप का साक्षी एक मैं हूँ, ऐसे सब रूप को एक करना है, लय करना है, सब रूपों का लय ये एक रूप में करना है। मैं जान रहा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, और ये दृष्टि सबको देख रही है। मन में से रूप को देखने की एक भी वासना न उठनी चाहिए। प्रारब्धवशात जो उठ जाए उसे सिर्फ देखते रहना चाहिए। प्रारब्ध जो दिखाता है वो देखते रहना चाहिए। पर ये कब होगा? और ये एक चक्षु इंद्रिय की बात की। अब जितना जितना श्रवण किया हुआ है, जो भी हम श्रवण कर रहे हैं उसका लय कर देना है। किसमें? तो बोले कि ये जो कर्णेन्द्रिय है सब शब्दों को सुन रही है, शब्द अनेक है, शब्द सुनने वाला करण जो है वो एक ही है, और वो करण है ये मैं जानने वाला हूँ। तो मैं क्या हो गया? मैं ये शब्द नहीं हूँ, मैं शब्द को जानने वाला श्रोता हूँ। इस प्रकार आत्मा श्रोता है वो मैं हूँ ऐसा पता लगेगा। आपके अनुभव का विषय बनाइए ये परमात्मा को। ये मैं दृष्टा हुआ, मैं श्रोता हुआ। अच्छा, मनन यानी संकल्प विकल्पात्मिका अंतकरण बुद्धि वृत्ति सब विषयों का विचार कर रही है, ऐसा है ऐसा है, इमेजिनेशन कर रहे हैं, मैं यहाँ जाऊंगा, ऐसा करूंगा, मैंने ऐसा किया था, यानी भूतकाल का सोच रहा है, जो भीतर बैठे बैठे वर्तमान के सपने लगा रहा है, जो तो ये जो मन है वो भाई विचार तो अनेकों है, पर वो विचार को करने वाला जो मन है वो तो एक ही है, और ये सब कर रहा है वो मैं जान रहा हूँ। वो मन के अनेकों विचारों को जानने वाला मैं कौन हूँ? मैं तो मनता हूँ, ना मैं विचार हूँ ना मैं मन हूँ, मैं मन को जानने वाला मनता हूँ। ऐसे आप मनता हो गए, क्योंकि ये तो मुखपाठ हो गया है हमें, श्रोता मनता दृष्टा घंटा विज्ञाता, ऐसा निधि ध्यान करके हम बोल देते हैं क्या? तो ये मैं मनता हुआ, ओहो मैं मनता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं श्रोता हूँ, मैं गनता हूँ, ऐसा कौन जानता है? मैं श्रोता हूँ ऐसा मुझे किसने कहा? वो जो है, जो ऑथोरिटी है, वो जो फैकल्टी है जो ऐसा मुझे जता रही है भीतर से,